मुख्य समाचारों में फेडरल विपक्ष के नेता एंथनी एल्बनीजी ने संबोधित किया नेशनल प्रेस क्लब को। रूस के सामने आत्मसमर्पण के बाद सैकड़ों मारियोपोल स्टील प्लांट सैनिकों की सुरक्षा का डर। और भारत में ज्ञानव्यापी मामले में वाराणसी कोर्ट में कल दायर याचिका पर आज सुनवाई। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। एंथनी एल्बनीजी ने नेशनल प्रेस क्लब को अपने संबोधन में इस बात की पुष्टि की है कि लेबर घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए 10 दिनों की सवैतनिक छुट्टी का कानून बनाएगी। बृहस्पतिवार को लेबर की चुनावी लागत जारी करने से पहले श्री एल्बनीजी ने अपने भाषण में पूर्वाभास दिया कि यदि उनकी सरकार बनती है तो कम्युनिटी डेवलपमेंट ग्रांट्स प्रोग्राम में फंडिंग को कम करके $350 मिलियन करेगी और $400 मिलियन की क्षेत्रीयकरण फंड यानी रीजनलाइजेशन फंड को वापस बजट में डालेगी। लेबर द्वारा कम्युनिटी डेवलपमेंट ग्रांट्स प्रोग्राम भारी जांच के दायरे में आया है कि ये मार्जिनल और कोलिशन सीट्स के पक्ष में है। विपक्षी नेताओं ने ऑस्ट्रेलियन मतदाताओं के लिए अब सरकारी बर्बादी, जलवायु परिवर्तन, विदेश नीति और मजदूरी पर ध्यान केंद्रित कराया है। एंथनी एल्बनीजी का कहना है कि आज बुधवार के वेतन के आंकड़े सिर्फ 2.4% की वृद्धि दिखा रहे हैं, मुद्रास्फीति के 5.1% की वृद्धि की तुलना में। ये कमजोर ऑस्ट्रेलियन लोगों को और पीछे की ओर कर रही है।
A fall of 2.7%. What a hit. This delivers the biggest cuts to real wages in more than 20 years. Under Scott Morrison, real wages are plummeting while the costs of living are skyrocketing. Australian workers are paying the price for a decade of bad policy and economic failures.
मार्च तिमाही में वेजेस सिर्फ 0.7% से बढ़े हैं, अनुमान से कम और मुद्रास्फीति की दर से बहुत पीछे। 5.1% मुद्रास्फीति की तुलना में वार्षिक वेतन वृद्धि 2.4% पर है, जैसा कि रिजर्व बैंक ने भविष्यवाणी की है। जीवन की बढ़ती लागत से मेल खाने के लिए वेतन वृद्धि के लिए 2023 के अंत तक का समय लगेगा। चुनाव प्रचार के दौरान वेजेस एक प्रमुख मुद्दा बन गया है, जिसमें लेबर ने वादा किया है कि यदि शनिवार को जीत होती है तो न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए फेयर वर्क कमीशन को एक सबमिशन दिया जाएगा। गठबंधन का कहना है कि वो इस प्रक्रिया को फेयर वर्क कमीशन पर छोड़ देगा, जो जून में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेगी। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि मुद्रास्फीति अभी भी तुलनात्मक रूप से कम है।
I'm saying wages are rising and will rise. The challenge is inflation. The challenge is inflation, and that's a global challenge. So I draw your attention to the facts. Let's focus on the facts. In Australia, inflation 5.1%. In New Zealand, almost 7%. In the United States, 8.5%.
गठबंधन अपने आर्थिक रिकॉर्ड का बचाव कर रहा है, क्योंकि नए डेटा से पता चलता है कि मजदूरी मुद्रास्फीति के स्तर के अनुरूप नहीं है। ऑस्ट्रेलियन लोगों को वास्तविक वेतन कटौती का सामना करना पड़ रहा है। सरकार का कहना है कि इसके खर्च के उपाय गैर मुद्रास्फीतिकारी हैं और ऑस्ट्रेलिया अन्य देशों जैसे न्यूजीलैंड और अमरीका, जहाँ मुद्रास्फीति अधिक है, उसकी तुलना में अच्छा कर रहा है। वित्त मंत्री साइमन बर्मिंघम का कहना है कि सरकार जीवन यापन की बढ़ती लागत पर डाउनवर्ड प्रेशर डालने के उपायों को लागू कर रही है।
But the challenge certainly that Australia is facing and the whole world is facing are the inflationary pressures from right around the world, particularly those inflationary pressures that have spiked following Russia's invasion of Ukraine. These are real challenges and Australia is withstanding those challenges better than most other nations of the world.
आज 18 मई आखिरी दिन है जब कोविड पॉजिटिव ऑस्ट्रेलियन डाक वोट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन चुनाव आयोग का कहना है कि यदि आप शनिवार 14 मई से कोविड-19 के लिए सकारात्मक हैं तो डाक मतदान आपके लिए उपलब्ध विकल्प है। मतदाता आज शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष कोविड प्रभावित मतदाताओं को टेलीफोन वोट डालने की अनुमति देने के लिए कानून भी पारित किया गया था। एईसी का कहना है कि ये एक आपातकालीन उपाय है जिसे केवल अंतिम उपाय के रूप में ही लिया जाना चाहिए। फोन वोटिंग उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो दृष्टिहीन हैं या जिनकी दृष्टि कम है या जो अंटार्कटिका में काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मारियोपोल गिरने की कगार पे है क्योंकि सैकड़ों यूक्रेनी लड़ाकों ने अजोवस्टाल स्टील प्लांट को छोड़ दिया है। रूसी अधिकारियों का कहना है कि कम से कम 265 सैनिक जो महीनों से घेराबंदी कर रहे थे अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के वीडियो में लड़ाकू विमानों को संयंत्र से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। कुछ को स्ट्रेचर पर ले जाया गया और कुछ को रूसी सैनिकों द्वारा खोजा जा रहा है। डर है कि कुछ को बंदी बनाकर डोनेट्स्क के पास एक रूसी नियंत्रित शहर ओलिमेंका में ले जाया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अपने शेष सैनिकों को अजोवस्टाल स्टील प्लांट से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए काम कर रहा है।
The evacuation mission is continuing. It is being supervised by our military and intelligence officers. The most influential international mediators are involved.
US think tank Institute of the Study of War का कहना है कि यूक्रेनी अधिकारियों और क्रेमलिन के बीच बातचीत से शर्त के साथ आत्मसमर्पण हुआ होगा जिससे सैनिकों को संयंत्र छोड़ने की अनुमति मिल सकती है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को झेल रही है। इस साल कूलर लालीना मौसम चक्र के दौरान रीफ में बड़े पैमाने पर विरंजन के आधिकारिक आंकड़ों की पुष्टि हुई, लेकिन चुनाव अभियान के दौरान इस विश्व विरासत सूचीबद्ध राष्ट्रीय संपत्ति पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का बहुत कम उल्लेख किया गया है। गठबंधन ने 9 वर्षों में रीफ फंडिंग के लिए $1 बिलियन का वादा किया है जो लेबर से मेल खाता है। उसके बाद लगभग $200 मिलियन और डाले गए, लेकिन टॉरस स्ट्रेट में रहने वाले डेनियन बिली का कहना है कि अभी और बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।
We need action right now. Coral bleaching, it'll affect our way of living, because we're seafaring people. And we leave off the sea.
भारत में ज्ञान वापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी कोर्ट में कल दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई होनी है। ज्ञान वापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में 3 बिंदुओं को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिसमें वजू के स्थान को शिफ्ट करने की मांग की, नंदी के सामने बंद दीवार को तोड़े जाने की मांग और कथित शिवलिंग के नाप जोख करने की मांग की गई। जैसा कि विदित है, ज्ञान वापी सर्वे में हिंदू पक्ष ने वजूखाने की जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया है। कोर्ट से इस स्थान को सील करने के साथ सुरक्षा देने की मांग की गई, जिसके बाद कोर्ट ने उस स्थान को सील करने का आदेश दिया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वो एक फव्वारा है। और बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, ऑस्ट्रेलिया का $1 अमेरिका के 70 सेंट और भारत के ₹54.50 के बराबर है। खेल समाचारों में, मिक वॉटर बाकी NRL सीजन के लिए कैंटरबरी बुलडॉग कोच के रूप में कार्यभार संभालेंगे। बुलडॉग के साथ 2 बार के प्रीमियर विजेता खिलाड़ी पॉटर ने 2013 और 2014 में वेस्ट टाइगर्स को कोचिंग दी, लेकिन किसी भी अभियान में फाइनल तक पहुँचने में विफल रहे। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी बृहस्पतिवार को पर्थ में 1-2 बौछारें, अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री। एडिलेड में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 7 डिग्री। मेलबर्न में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 16 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। होबार्ट में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 14 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। कैनबरा में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 14 डिग्री, न्यूनतम -3 डिग्री। सिडनी में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। ब्रिस्बेन में 1-2 बौछारें, अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 16 डिग्री। और डार्विन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।